राजेश ने प्रीति के फैसले का सम्मान करते हुए उसे उसके ससुराल छोड़ दिया, पर स्वयं उस घर में कदम नहीं रखा। प्रीति को समझाकर और उसका सामान बाहर गेट पर रखकर वो दरवाजे से ही लौट गया। उसे जाते देखकर इतनी देर में पहली बार प्रीति की आंखों में नमी आई, पर उसने आंसुओं को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। खुद को मजबूत बनाए रखते हुए उसने अपने आंसू आंखों में ही सुखा लिए और डोरबेल बजा दी। अंदर सब शायद उसी के इंतजार में बैठे थे। डोरबेल बजने के अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। सामने गरिमा जी खड़ी थी। प्रीति ने आदर सहित अपनी सास के पैर छूने चाहे, पर उन्होंने बीच में ही उसे रोकते हुए अपने सीने से लगा लिया। प्रीति उनके ममता भरे एहसास को महसूस करके भी शांत और गंभीर बनी रही, जबकि उसकी अवस्था देखकर गरिमा जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। उन्होंने भारी गले से कहा, ये क्या हाल बना लिया आपने अपना बहू? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, प्रीति ने उनसे अलग होते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया। गरिमा जी कुछ पल उसे खामोशी से देखती रहीं। उसकी हालत की जिम्मेदार कहीं न कहीं वो खुद भी थीं। बेहद शर्मिंदा थीं वो। प्रेम पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उनकी ही औलाद इतनी दुष्ट निकली कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके भाग गया वो। बेबस इतनी कि चाहकर भी प्रीति के लिए कुछ कर नहीं सकती थीं। उन्होंने खुद को संभाला, फिर प्रीति का सामान और उसे लेकर अंदर चली आईं। अवधेश जी वहीं थे। प्रीति की हालत देखकर वो भी सदमे में चले गए थे। जब शादी करके आई थी तो कैसे खिला हुआ फूल लगती थी, और अब कैसे कुम्हला गया था उसका चेहरा। शरीर भी पहले से कमज़ोर लग रहा था, जैसे किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो। उन्हें भी उस बच्ची पर दया आने लगी, पर कर भी क्या सकते थे। उन्होंने एक नज़र गरिमा जी को देखा, फिर कमरे में चले गए। उनका इशारा समझते हुए गरिमा जी ने प्यार से प्रीति के गाल को छूकर कहा, प्रीति बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, हम कुछ बनाकर लाते हैं आपके लिए। कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप कुछ ही दिनों में, ऐसी हालत में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आप जाकर आराम करिए, हम आपके खाने को कुछ पौष्टिक बनाकर लाते हैं। प्रीति खाने से इनकार करने वाली थी, पर उनकी बात सुनकर उसके जहन में उसके बच्चे का ख्याल आया और वो कहते कहते रुक गई। फिर उनकी बात पूरी होने के बाद सहजता से बोली, मम्मी जी, मैं उस कमरे में नहीं रहूंगी। उसके मन की पीड़ा जो उसकी अपनी माँ नहीं समझ सकी, वो गरिमा जी समझ गईं। वो हौले से मुस्कुराई, फिर मानसी को देखकर बोली, मानसी बेटा, भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। मानसी ने तुरंत सिर हिलाया और उसका सामान लेकर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर बाद गरिमा जी कमरे में आईं और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगीं, पर प्रीति ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं खुद से खा लूंगी मम्मी। अच्छी बात है, आप खाना खाइए और पूरा ख़त्म कीजिए, हम आपके लिए बादाम वाला दूध लेकर आते हैं। गरिमा जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गईं। प्रीति बेमन से निवाले कटकने लगी। कुछ देर बाद गरिमा जी फिर आईं और उसे दूध पिलाने के बाद उसे लिटाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगीं। कुछ ही देर में प्रीति को नींद आ गई, जाने कितनी रातों से ठीक से सोई नहीं थी। जब गरिमा जी का ममता और स्नेह भरा हाथ सर पर आया तो जल्दी ही वो नींद की आगोश में समा गई। गरिमा जी ने अपने आंसू पोंछे और कमरे का दरवाज़ा हल्का बंद करते हुए कमरे से बाहर चली गईं। अवधेश जी पुलिस का फ़ोन आने पर पुलिस स्टेशन गए हुए थे। मानसी छत पर टहलते हुए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। भाई के जाने से दुखी थी वो। इन दिनों घर का माहौल भी तनावपूर्ण था तो अपनी सहेली से अपना दुख बांट रही थी। गरिमा जी प्रीति को सुलाकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि डोरबेल बज उठी। वो दरवाज़ा खोलने चले आई। गेट खोला तो सामने प्रेम की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसका रंग थोड़ा सांवला था मगर चेहरा बेहद आकर्षक, तीखे नयन नक्श और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास छलक रहा था। कदकाठी मजबूत थी, हीरो जैसी बॉडी नहीं पर पूरा बदन फिट और गठीला। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछ थी जो उसके लुक में एक खासा चाम जोड़ रही थी। उसने लाइट ब्लू शर्ट और कैमल कलर की पैंट पहन रखी थी। सिंपल फॉर्मल लुक में भी वो काफी स्मार्ट लग रहा था। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, होठों पर एक शांत सी मुस्कान थी। जैसे ही उसकी नजर गरिमा जी पर पड़ी, वो तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और प्यार से बोला, मामी, फिर उनके गले लग गया। ये था आयुष्मान उर्फ आयुष, अवधेश जी की बहन का बेटा। उनकी बहन और जीजाजी को मरे सालों बीत चुके हैं। उनके देहांत के बाद आयुष को उनके पिता के छोटे भाई ने अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तब अवधेश जी अपने भांजे को अपने साथ अपने घर ले आए और अपने जीजाजी और बहन की आखिरी निशानी अपने बेटे को बहुत लाड प्यार और दुलार से पालने लगे। प्रेम और आयुष हम उम्र थे, पर आयुष बचपन से काफी समझदार और दिमाग का बहुत तेज था। शांत सरल स्वभाव का मालिक था वो, इसलिए अवधेश जी को बहुत प्रिय था। गरिमा जी का भी विशेष स्नेह प्राप्त था आयुष को। दोनों ने कभी उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, अपने बेटे जैसे पाला। उन्होंने ही उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई और हर बार आयुष ने उनके सर को गर्व से ऊंचा किया। कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अच्छी जॉब के लिए बहुत थक्के खाने पड़े उसे, पर काबिल था वो। काफी मेहनत और बहुत जगह थक्के खाने के बाद उसे गुड़गांव की एक एमएनसी में जॉब मिल गई और बीते एक साल में जी तोड़ मेहनत करके उसने कंपनी में अपनी एक स्टेबल पोजिशन भी बना ली है। बॉस के विश्वसनीय लोगों में शामिल हो चुका है और यही वजह थी कि वो प्रेम भी शादी में नहीं आ सका था, क्योंकि तब बॉस के साथ आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा था उसे। पर लौटने ही सीधे वो यहाँ आया था और काफी खुश था क्योंकि लगभग साल भर बाद लौटा था। शुरू में नई जॉब की तो आ नहीं सका,
फिर मौका नहीं मिला। शुरू में अप डाउन करता था पर बहुत मुश्किल पड़ता था, इसलिए पहली सैलरी से और लोन लेकर उसने वहीं ऑफिस के पास ही एक फ्लैट ले लिया था और एक साल में उसने लोन पे करके वो कर्ज भी अपने सर से उतार दिया है। पैकेज अच्छा था जिसमें कुछ अपने पास रखता है और बाकी यहाँ भेजता है। अगर करीमा जी और अवधेश जी ने उसे बेटा बनाकर पाला तो आयुष ने भी शुरू से ही एक बेटे की सभी जिम्मेदारियां निभाई। आज भी वो अपनी मामी कम माँ से मिलकर बहुत खुश था, पर उसे देखते ही करीमा जी अपना सब्र खो बैठी और उसके गले से लगे रो पड़ी, जिससे आयुष्मान ने चौंकते हुए उन्हें खुद से अलग किया और उनके आंसू पोंछते हुए हैरान परेशान सा बोला, मामी क्या हुआ आपको, आप ऐसे रो क्यों रही हैं, सब ठीक तो है यहाँ? आयुष्मान के सवाल को सुनकर गरिमा जी ने रोते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं बेटा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी सालों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। गरिमा जी की बातें सुनकर और उन्हें यूं रोते देखकर आयुष्मान और ज्यादा परेशान हो गया। वो अपना सामान लिए उन्हें अंदर लेकर आया और उन्हें सोफे पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाया। जब वो कुछ शांत हुई तो उनका हाथ थामकर नीचे फर्श पर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, मामी क्या हुआ है, आपको ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, प्रेम की शादी हुई है तो आपको तो खुश होना चाहिए, फिर आप रो क्यों रही थी, क्या कुछ गलत हो गया है, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ कर सकूं।
गरिमा जी कुछ पल खामोश सी उसे देखती रहीं, फिर रुंधे गले से बोली, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, हमारे एक गलत फैसले ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रेम शादी करके अगले ही दिन घर छोड़कर भाग गया, उन्होंने हमारी परवरिश पर सवाल उठवा दिए और उनके इस कदम ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जिसे हम बहू बनाकर इस घर में लाए थे, और उनकी आज ये हालत है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, कसूरवार हम हैं, पर सजा हो बेचारी बच्ची भुगत रही है। गरिमा जी की बात सुनकर आयुष्मान को झटका सा लगा, उसने चौंकते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं मामी, ऐसा कैसे कर सकता है प्रेम? उन्होंने ऐसा ही किया है बेटा, वो अपने ऑफिस की किसी लड़की को चाहते थे पर आपके मामा उनके रिश्ते के खिलाफ थे, प्रेम शादी नहीं करना चाहता था पर हम दोनों के दबाव में आकर उन्होंने शादी कर ली, हमने सोचा था शादी के बाद उनका मन बदल जाएगा और वो प्रीति को अपना लेंगे, पर वो शादी की रात प्रीति के साथ बिताकर अगली सुबह ही उसे छोड़कर भाग गए, उस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, अगर बस शादी हुई होती और उन्होंने ऐसा कदम उठाया होता तो हम प्रीति की कहीं और शादी करवा देते, पर वो माँ बनने वाली है प्रेम के बच्चे की और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। प्रीति नाम सुनकर आयुष्मान के चेहरे के भाव कुछ बदल से गए पर फिर सहज हो गए। गरिमा जी की पूरी बात सुनने के बाद तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया था, वो अचंभित सा उन्हें देखते हुए बोला, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि प्रेम ऐसा कुछ कर सकता है, सोचा तो हमने भी नहीं था बेटे, पर उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ दिया, उस बच्चे का जीवन तबाह कर दिया उन्होंने, उन्हें माँ बनाकर जाने कहाँ छुप कर बैठे हैं और यहाँ इस बच्चे की अवस्था इतनी दयनीय है कि हमसे देखा नहीं जाता, वो बच्चे को गिराने को तैयार नहीं, उनके परिवार वाले उन्हें रखना नहीं चाहते, प्रेम का कुछ पता नहीं, ऐसे में उस मासूम और उसके अंदर पल रही नंधी सी जान का क्या होगा, ये चिंता हमें खाई जा रही है। गरिमा जी की आंखें फिर नम हो गई तो आयुष्मान ने उन्हें संभालते हुए कहा, आप रोइए मत मामी और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा, प्रेम कहाँ जाएगा भागकर, जल्दी ही वो मिल जाएगा और मैं उसे समझाऊंगा, उसे अपनी पत्नी और बच्चे को अपनाना ही होगा, यूं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता वो, सब ठीक हो जाएगा मामी, बस आप हिम्मत रखिए। आयुष्मान के सांत्वना देने पर गरिमा जी को कुछ संबल मिला, उन्होंने अपने आंसू पोंछे फिर वहां से उठते हुए बोली, बेटा आज जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, इतनी दूर से आए हैं थक गए होंगे, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। गरिमा जी जैसे ही जाने को मुड़ी आयुष्मान ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं मामी अभी भूख नहीं है तो अभी कुछ नहीं खाऊंगा, बस फ्रेश होकर कुछ देर आराम करूंगा, वैसे मामी मामा जी और मानसी कहाँ हैं? आपके मामा जी तो पुलिस स्टेशन गए हैं, आजकल वहीं के चक्कर काटते हैं, और मानसी छत पर होगी, जाकर मिल लीजिए, बीते दिन जो कुछ हुआ उसकी वजह से उदासी रहने लगी है, आपको देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आयुष्मान ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।